कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। नारद भक्ति सूत्र की चर्चा कल से हो रही है और चार श्लोकों की चर्चा हो चुकी है और यहाँ पे इस पांचवें सूत्र में नारद मुनि कहते हैं, यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यत जिसे प्राप्य प्राप्त करने से, किसे प्राप्त करने से?
भक्ति।
हम कैसे जानते हैं कि ये भक्ति की बात हो रही है? प्रारंभ में क्या कहा था? अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सबसे पहले सूत्र में ही नारद मुनि कहते हैं अभी, अतः मैं अभी भक्ति की व्याख्या करूंगा। और ऐसे करते करते पिछले श्लोक में भी उन्होंने कहा यल लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके, लब्ध्वा और प्राप्य एक ही अर्थ है। तो क्योंकि भक्ति की व्याख्या हो रही है तो भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, भक्ति प्राप्त करने से क्या होता है, ये सब अभी कह रहे हैं नारद मुनि। तो इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, यत प्राप्य जिसे प्राप्त करके, न किंचित वांछति, किंचित मतलब कुछ भी, हाँ थोड़ा भी, न किंचित कुछ भी थोड़ा भी नहीं चाहते, वांछति मतलब नहीं इच्छा करते हैं वो व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर लेता है किसी भौतिक चीज की कामना नहीं करता, किंचित भी नहीं करता। न शोचति अर्थात कि वो सोचता नहीं है,
शोक नहीं,
श श है ये, स नहीं है, श श अर्थात शोक करना, वो किसी भौतिक चीज के लिए शोक नहीं करता। भक्ति के सर्वोत्तम स्तर पे माधवेंद्र पुरी ने दिखलाया था कि कैसे शोक करना चाहिए, परंतु वो शोक भौतिक शोक नहीं है, वो शोक विरह का शोक है जो सर्वोत्तम आनंद का प्रतीक है। तो यहाँ जब भी शोक आदि की चर्चा होती है तो उसी भाव से या उसी अर्थ से कि जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण करते हैं, न शोचति न द्वेष्टि, न द्वेष्टि अर्थात न द्वेष नहीं करता है किसी से, न रमते, रमते अर्थात राम में विश्वास नहीं करता नहीं, और बिल्कुल गंभीर रहता है, कभी रमण नहीं करता किसी चीज में, न रमते ना, रमण नहीं करना किसी। तो क्या अर्थ है इसका, किसी भौतिक चीजों में रमण नहीं करना, ये महत्वपूर्ण चीज है। आध्यात्मिक जीवन में तो रमण करना ही चाहिए, ये तो आनंद का रास्ता है, इसलिए आध्यात्मिक आनंद तो मिलना ही चाहिए। आध्यात्मिक आनंद मिले बिना हम भौतिक चीजों को कैसे त्याग सकते हैं, संभव नहीं है। जब हम किसी श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करते हैं तभी जाकर निम्न श्रेणी के वस्तु को त्याग सकते हैं, बल्कि जब हम किसी श्रेष्ठ वस्तु का में आनंद लेते हैं तब हम ये जान लेते हैं कि अन्य वस्तुएं निम्न श्रेणी के हैं। तब तक हम ये भी नहीं समझते कि ये निम्न श्रेणी के वस्तु हैं, हम सोचते हैं कि ये कितने श्रेष्ठ हैं, इनको प्राप्य समझते हैं, प्राप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य, इनको अपना ध्येय बनाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिं विष्णु दुराशया, ये बहिरर्थ मालिन है। तो दुराशा करके बैठते हैं, अपना हित अपना स्वार्थ वो संसार के वस्तुओं में है ऐसा समझ के बैठते हैं। परंतु संसार के वस्तुओं से भी व्यक्ति चाहता क्या है, आनंद ही चाहता है ना। हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे उद्देश्य केवल आनंद का ही होता है। यदि आनंद हमारा उद्देश्य है तो जिस कार्य से या जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हमें सर्वोत्तम सनातन आनंद मिलेगा वो कार्य वो व्यक्ति फिर सर्वोच्च होने चाहिए, तो उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और उनको प्राप्त करके जब हम वो उच्च आनंद का अनुभव करते हैं तो फिर अपने आप हम समझ लेते हैं कि अन्य तथा कथित प्राप्य वस्तुएं ये केवल स्वप्न के वस्तुएं हैं, स्वप्न का आनंद है। इसलिए न रमते, ये इसका तात्पर्य है भौतिक चीजों में रमण करना। आप में से कोई श्लोक बता सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा। तो शब्द भेद करके इसका अर्थ समझाओ। रमन्ते योगिनः अनन्ते, तो क्या मतलब?
तो योगी, सही योगी जो रहता है वो अनंत भगवान में
हाँ वो बहुवचन में है। तो रमन्ते योगिनः क्या करते हैं? रमन्ते, रमन्ते अर्थात रम धातु, आनंद लेना। किसमें अनंत आनंद लेते हैं वो? हाँ, जो अनंत है उसमें वो रमण करते हैं। आपको याद होगा कल हम चर्चा कर रहे थे कि सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। तो सत्य की परिभाषा क्या थी? जो शाश्वत है, जो टिकता है सदैव, वो सत्य है। अर्थात उसका अंत नहीं होना चाहिए, अर्थात वो अनंत है। तो भौतिक जगत में कोई अनंत वस्तु, अनंत व्यक्ति, अनंत कार्य तो है नहीं। केवल भगवान और भक्ति ही अनंत है। तो इसलिए जब यह रमन्ते योगिनो अनन्ते, इसका मतलब है वो एक किसी अनंत चीज में, अनंत कार्य में रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। परंतु हमें यह भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि अनंत है क्या। तो योगिनो रमन्ते, योगिनो रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। और ये अनन्ते या अनंत जो है ये रमण, ये सत्य आनंद है, मिथ्यानंद नहीं है, सत्यानंद है, सच्चा आनंद। क्योंकि ये आनंद भी अनंत है, ये टिकता है। और ये कैसा आनंद है जो अनंत है और जो सत्य का आनंद है? चित आत्मनि, चित शक्ति आध्यात्मिक है। तो ये भौतिक चीज नहीं है। फिर इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो इसलिए ये राम शब्द जो है जिसमें इसको, ये भगवान को, परम ब्रह्म भगवान को संबोधित करता है। क्योंकि उनमें योगी जन रमण करते हैं। तो राम है ना शब्द, राम कहाँ से आता है? रमण से आता है, रम, रम धातु से। और मूल राम कौन है? कृष्ण। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु केतु। कृष्ण स्वयं समभवत् पूर्णः परमः पुमान् यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजा। तो राम शब्द के अर्थ प्रभुपाद जी अलग अलग जगह बताते हैं। राम है भगवान रामचंद्र, अयोध्यावासी दशरथ पुत्र। दूसरे हैं परशुराम, तीसरे हैं बलराम, और चौथा कौन है? राधिका रमण राम। जो राधिका में रमण करते हैं वो कृष्ण हैं, वो मूल राम है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि और योगी जन रमण करते हैं उस आनंद में। तो सबसे ऊंचा योगी कौन है? भक्ति योगी है तो भक्त ही सबसे ऊंचे आनंद में रमण करते हैं, जैसे आज सब आपने किया सुबह को, है ना। तो न रमते नोत्साही भवति, मतलब न उत्साही भवति। उत्साही अर्थात हमें उत्साही नहीं बनना है, ढीला रहना है, नहीं कोई कार्य में उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे नारद मुनि का कथन है, सही है। भौतिक कार्यों में उत्साह ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, आध्यात्मिक कार्यों में उत्साह होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं उपदेश अमृत में, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना फिर त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो जो षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्ध्यति, भक्ति के लिए जो लाभदायक है छह वस्तुएं, उनमें से सबसे पहले है उत्साही, कि हमें उत्साही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ढीला ढाला है, बस वो ऐसे ही बैठा रहता है, अरे क्या अभी सेवा करना, अरे करेंगे बाद में करेंगे, अभी क्यों, तो ऐसे उत्साह नहीं रहा तो स्वयं वो आनंदित नहीं रहेगा भक्ति में, और धीरे धीरे से उसकी रुचि निकल जाएगी भक्ति से, और फिर वो तरह तरह के अन्य चीज़ों में रमण करना करने लगेगा, और उसको लगेगा कि अरे ये सब मैं त्याग दूँ, ये रास्ता अब कुछ काम का नहीं है मेरे लिए, या ऐसे यूं ही खींचता रहेगा तो उसे आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए एक आनंदित भक्त, एक सच्चे भक्त का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो उत्साही रहता है। जैसे किसी एक रोग के भी लक्षण होते हैं ना, जब वैद्य किसी रोगी को देखता है लक्षण से ही उसे पता चलता है, कि एक अनुमान लगाता है वो कि किस तरह का रोग होता है। प्राचीन काल में जो वैद्य होते थे, दरवाजे से जब रोगी चल के अंदर आता था तभी से वो अनुमान लगाना शुरू करते थे कि इसका चेहरा कैसे, इसकी आंखें कैसे, ये कैसे, वो कैसे, चलता कैसे है, और यहाँ तक कि वो आए उनके पास तब तक थोड़ा कुछ अनुमान लगा ही लेते थे लक्षण देख के केवल। और उसी तरह से हम लक्षण देखते हैं एक दूसरों के। तो जो भक्त उत्साही है, हम समझ सकते हैं कि ये आनंद ले रहा है भक्ति में और ये आगे बढ़ेगा। परंतु अति उत्साह भी अच्छा नहीं है ना, वो प्रारंभ में ऐसे होता है, उत्साहमयी भक्ति, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माधुर्य कदम्बिनी में, नए नए भक्ति में आने के बाद इतना उत्साह होता है कि व्यक्ति बस यहाँ वहाँ कुछ भी कर लेता है, प्रभु ये लाओ, हाँ लाऊंगा, जाके कहीं सर लग जाता है कुछ हो, कोई परवाह नहीं, वो लेके आएगा, अति उत्साह। परंतु वो अति उत्साह ज्यादा समय के लिए रहता नहीं है, फिर धीरे धीरे से वो उत्साह कम होने लगता है, भक्तों में वो कमियां देखने लगता है, और धीरे धीरे से उसे लगता है कि अरे क्या अन्य लोग तो ऐसे नहीं है ना, मेरे जो उत्साह नहीं तो मैं भी उत्साह क्यों हूँ, हो जाऊं, तो उसके उत्साह भी कम होने लगता है। तो उत्साह एक महत्वपूर्ण मापदंड है हमारे भक्ति के स्वास्थ्य के लिए। यदि कोई भक्त उत्साही नहीं है तो तुरंत हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहीं कुछ शायद ज्यादा ना हो, लेकिन बुखार कुछ हो सकता है, आध्यात्मिक कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बतला रहे हैं जो छह विनश षड्भिर भक्तिर विनश्यति, जो चीजें, छह चीजें भक्ति का विनाश करती हैं उपदेशामृत से, उनकी व्याख्या यहाँ पर प्रभुपाद जी करते हैं, अत्याहार प्रयासश्च इत्यादि। और फिर जो चीज अनुकूल हैं उनका भी वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी, उत्साह निश्चय धैर्य। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें दोनों चीजें देखनी चाहिए, जो अनुकूल हैं और जो प्रतिकूल है। परंतु यहाँ पर हमें नकारात्मक आदेश दिए गए हैं, न न न न, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। दो प्रकार के नियम होते हैं, एक को कहते हैं विधि, दूसरे को कहते हैं निषेध।
निषेध
हाँ, तो विधि और
निषेध
निषेध, नियम के दो प्रकार, दोनों में अंतर क्या है कौन बताएंगे? हाँ,
एक विधि मतलब जो करना है,
हाँ
निषेध मतलब जो कार्य नहीं करना है।
हाँ नियम दो प्रकार के, एक जो करना है और निषेध जो नहीं करना है। जब हम वैद्य के पास जाते हैं तो हमें दोनों प्रकार के नियम वैद्य बताते हैं, ये गोली ले लो, इस तरह का भोजन खाओ, और निषेध भी कह बताते हैं। वो कहते हैं ये तले हुए चीज़ें नहीं खाना, ऐसे ठंडे पानी से स्नान अभी नहीं करना एक दो दिन, ये नहीं करो, वो नहीं करो, और ये करो। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी हमारे आचार्यों ने और हमारे शास्त्रों में ऐसे विधि और निषेध दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो निषेध है वो बताए हुए कि भौतिक चीज़ों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, भौतिक चीज़ों में रमण नहीं करना चाहिए, और उत्साही भी नहीं होना चाहिए। अभी छठा सूत्र, फिर से यत 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 अर्थात जिस चीज का, किसका? भक्ति का। तो यहां शुरुआत के दो शब्द कौन से हैं? यज्ञात्वा, क्या मतलब? जिसको जानने के बाद, जिसको जान कर, मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। भवति मतलब हो जाता है। व्यक्ति सबसे पहले क्या होता है? मत्तः। मत्तः का क्या मतलब है?
पागल
पागल नहीं, हाँ
नशा,
नशा, नशा में जैसे आ जाता है। मत्तः, उन्मत्तः, प्रमत्तः, एक नशा है। तो जो भी चीजें भौतिक जगत में होती है ना, जो लोकप्रिय होती हैं, केवल उनको हमें कृष्ण में केंद्रित करना है, बस उतना ही करना है। तो अन्य साधारण भौतिक कार्यों में और वस्तुओं में, खाद्य पदार्थों में आदि उन्मत्त होए बिना हमें कृष्ण भक्ति में उन्मत्त होना चाहिए। क्या करें, बाहर जा रहे हैं क्या? सुन ऋषिकेश,
थोड़ा भक्तों को फोन करने जा रहे हैं मेरे आमटे के भक्त।
अच्छा, तो बैठना चाहिए अभी, ये सेवा क्यों लिया बोला है? अभी क्यों सेवा है? अभी श्रवण करने का समय है। तो वही चीजें जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, उत्साह भगवान के लिए होना चाहिए, भौतिक चीजों के लिए नहीं। उसी तरह से अभी उन्मत्त होना चाहिए मत्तः, परंतु कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति का नशा लगना चाहिए। और वास्तव में क्योंकि संसार में लोगों को और किसी नशे का ज्ञान नहीं है ना, सिवाय शराब और ये सब ड्रग्स वगैरह जो होते हैं ना, इससे अतिरिक्त उनको और कोई अनुभव नहीं है नशे का। तो इसलिए जब हरे कृष्ण आंदोलन पहले भारत में आया तो लोग यही सोचते थे कि ये लोग यही सब करते हैं, और जब हम लोग पहले ब्रह्मचारी बने थे तो उससे कई वर्ष पहले भी एक ये सिनेमा आया था, हरे कृष्ण हरे राम। और जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे उस समय का फिल्म है, परंतु ये बहुत प्रसिद्ध हो गया था हरे कृष्ण हरे राम। तो उसमें क्या दिखाते हैं कि नेपाल में वगैरह कोई हिप्पी लोग ये सब गांजा चरस अफीम जो भी सब ले रहे हैं और हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक अफवाह फैल गई थी कि जब ये हरे कृष्ण भक्त आए थे, प्रभुपाद जी जो भारत में इन्होंने संस्था चालू की थी इस्कॉन, ये सब विदेशी आए विदेशी आए, तो किसी ने अफवाह छोड़ लिया और ये फैल गई अफवाह कि ये सब नशे में रहते हैं, नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, ये सब इन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर सब जगह ऐसे, हम मुझे अभी भी याद है जब मैं नया ब्रह्मचारी था, मैं जब बाहर जाता था सड़कों पे रेलवे स्टेशन पे, कई बार इधर उधर लोग मजाक उड़ाते थे, वो ऐसे नकल करके हरे कृष्ण हरे राम ऐसे करते थे, मजाक उड़ाते थे। हम लोग जब जाते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, एक बार मैं किसी और भक्त के साथ जा रहा था, ऐसे किए ना, उसको इतना गुस्सा आया, वो तो लड़ने ही जाने वाला था, मैंने बोला चुप रहो आगे चलो अभी। हाँ तो उस तरह ऐसे वातावरण हुआ करता था। और वहाँ भी जब प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, तो ऐसे मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले युवा पीढ़ी के बीच में ही वो रहे, क्योंकि जिस स्थान में उनको कोई किराए पे मकान मिला वो वही स्थान था, उनके पास कोई ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, और किसी अच्छे स्थान में जाने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी जो कि उनके पास थे नहीं। तो सस्ते से सस्ते जगह में गए जहाँ ये सब शराबी लोग, ड्रग्स लेने वाले लोग, ये सब नशे में आके गिर के पड़ जाते थे, वहाँ पे आते थे। और वो हिप्पी काल था, तो ऐसे लोग आ तो इनके बीच में रहे प्रभुपाद जी, लेकिन उन्होंने ये भौतिक नशा छुड़वा कर उनको भक्ति का नशा दिलवाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जो वहाँ के लोग थे इनको ये बिल्कुल पता नहीं चला कि ये क्या जादू इन्होंने किया है। इसलिए बहुत सारे जो माता पिता आदि थे उन युवकों के युवतियों के, उन्होंने मानसिक डॉक्टरों को बुलाकर वगैरह इनसे इनको इनका अपहरण करके, उनको अदालत में केस डाल के, पुलिस में शिकायत डाल के कि ये लोग को इन्हों कुछ उनको नशे में डाल दिया है, कुछ पदार्थ मिला दिया खाने में और ऐसे कुछ कर दिया, उनको नशे में डाल दिया, देखो ये ऐसे बड़बड़ा रहे हैं ये लोग। क्योंकि बाहर का व्यक्ति को ऐसे ही लगता है ना, जब कोई कृष्ण भक्ति की बात करता है उनको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि इतने पैसे हैं, इतना अच्छा घर है, सुंदर रूप है, युवा अवस्था है, सब कुछ उपलब्ध है, और ये सब सर मुंडवा के और बेडशीट पहन के जा रहे हैं। उनको धोते होते क्या मालूम, वो बोले बेडशीट पहन के क्यों जाते हो आप। और पहले उनके समाज में तो शराब पीना ये तो एक साधारण बात है, कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है, माता पिता पी लेते हैं, बच्चों को भी थोड़ा बहुत जब बड़ा हो जाता है साथ में बैठ के सब पी लेते हैं। ये बच्चे जाके अभी माता पिता को डांट रहे हैं, आप लोग शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, तो इनको बड़ा धक्का लगा। तो ये लोग इस तरह के बहुत कार्य करने लगे, विरोधात्मक कार्य करने लगे। और ये चीज़ें फिर यहाँ तक पहुँची खबरें, और ये सारे भक्त यहाँ आए थे। तो क्या हुआ कि थोड़े हिप्पी जो थे जो ऐसे ड्रग्स लेके चलते थे, उन्होंने ऐसे कुछ किया होगा तो उसके पीछे सारे संस्था का नाम लग गया, सारे आंदोलन का नाम खराब हो गया इसकी वजह से। और उसको ठीक करने के लिए 20-25 साल लग गए। जब तक, जो इसका मतलब है कि जब संस्था बदनाम हो जाती है तो लोगों में ये गलत धारणा आसानी से जाती नहीं है। तो जब से ये गलत ऐसे अफवाहें फैलने लगीं, अफवाहों से मुक्त होने के लिए संस्था को 20-25 साल निकल गए। देखिए, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो जब नाम बुरा लग जाता है ना तो रह जाता है। और एक देश है जहाँ पर सदियों से भारत से निकले हुए, दक्षिण भारत से निकले हुए लोग थे, वहाँ जाके बसे हुए थे, देश का नाम नहीं बताऊँगा। तो हिंदू समाज अभी भी है काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर। तो वो एक ही देश है जिसने प्रभुपाद को अंदर जाने के लिए मना किया था। वो ईरान में भी गए थे और साम्यवाद रूस में भी गए थे, परंतु इस देश में नहीं जा पाए, उनको अनुमति नहीं मिली। और विरोध कहाँ से आया? हिंदू समाज से आया। क्यों आया? क्योंकि कोई उत्साही भक्त था, अति उत्साही। तो वहाँ पे अधिकतर जो भी हिंदू समाज के लोग थे, सब देवताओं के उपासक थे। तो कई मंदिर थे ऐसे देवताओं के, तो उन मंदिरों में जाके प्रवचन देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो हिंदू लोग खुश हो गए, ये विदेशी लोग हैं, गोरे लोग हैं, आके ये लोग हमारा धर्म अपनाया है और ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ पे ऐसे धुआंधार देवताओं की पूजा के विरोध में कह दिया कि लोग इतने विचलित हो गए। उन्होंने सरकार से शिकायत की और संस्था आज भी वहाँ पर ठीक से चल नहीं पाती है, दूसरे नाम से चलना पड़ता है। और प्रभुपाद जी को अंदर आने के लिए नहीं दिया उन्होंने, और आज भी धीरे धीरे से बदल रही है बात पिछले 5-6 साल में, परंतु ऐसे वस्त्रों में जाना नहीं हो सकता है। हमारे सन्यासी एक बार गए थे वहाँ पे एयरपोर्ट में, तो पैंट शर्ट पहन के गए, क्योंकि ऐसे वस्त्रों में अनुमति नहीं है, छोड़ते नहीं। तो गए अंदर एयरपोर्ट पे, अंदर कहीं शौचालय में गए, तो वहाँ शौचालय में एक व्यक्ति मिले, बोले हरे कृष्णा। तो उनको बड़ा उनको प्रसन्नता हुई कि हरे कृष्ण भक्त मिल गए। हरे कृष्णा उन्होंने बोला, साहब आइए हमारे साथ। और उनको एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाने दिया, वापस भेज दिया भारत। तो ये 40 साल पहले की घटना से उसको दूर करने के लिए 40 साल लगे हैं अभी तक। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के सब प्रजा में करें। एक बार संस्था का नाम खराब हो जाता है ना, तो फिर लोग इसको बदलना बहुत समय लगता है। तो ये जो अफवाहें थी, किसी ने फैलाई थी, तो ये रह गई। इसलिए ये सब हरे कृष्णा हरे राम, वो सब चिल्लम और ये वो चरस गांजा, इसके सब चीज़ें होने लगी। और ये भक्तों के लिए कितना कष्ट हुआ, क्योंकि उनको यही समझते थे कि ये जासूस हैं, अमेरिका के जासूस आए, जासूस यानी ये लोग करेंसी आए वाले हैं, भारत में जासूसी करने आए हैं, ऐसे सब नाना प्रकार के अफवाहें फैलने लगी थी। तो तात्पर्य ये है कि लोगों को जो नशा का अनुभव है वो केवल ऐसे चीजों से। तो जब कोई आध्यात्मिक नशा की बात आती है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इसका अस्तित्व भी नहीं जानते कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। वास्तव में अन्य धर्मों में भी यहाँ वहाँ के एक दो आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह का भाव कभी प्रकट किया हो, परंतु यहाँ भक्ति के, कृष्ण भक्ति के रास्ते में ऐसे न जाने कितने अनंत ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जो भगवान कृष्ण के नशे में, भक्ति के नशे में मत्त उन्मत्त होकर आनंद ले रहे थे। तो यत प्राप्य मत्तः भवति, मत्तो भवति, तो व्यक्ति बन जाता है मत्त, उसमें आनंद हो जाता है। और क्या होते हैं? स्तब्धो भवति, स्तब्धः मतलब दिव्य आनंद में स्तब्ध हो जाता है। और तीसरी बात, आत्मा रामः भवति, आत्म आराम, आत्म मतलब अपने आप में, आराम अर्थात संतुष्ट। फिर से ये आराम कहाँ से, कौन से धातु से आता है? रम। कैसे आराम कर रहे हो? आराम कर रहे। आराम शब्द भी साधारण हो गया है, कन्नड़ में भी बोलते हैं ना, है कि तेरा आराम कुछ बोलते हैं ना। तो आराम, आत्मा में आराम, आत्मा में आनंद, जो आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं वो आत्मा राम है। तो आत्मा राम श्लोक श्रीमद् भागवत का बहुत प्रसिद्ध है। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में श्लोक का उल्लेख करते हैं, किसको कंठस्थ है? हाँ,
आत्मा राम च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितुकि भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि।
बहुत अच्छा। तो शब्द भेद करके इसका अर्थ समझाना।
आत्मा रामश्च मुनयो,
आत्मा रामाश्च मुनयो
मतलब
आत्मा रामाह, मतलब बहुवचन हो गया। बहुत सारे आत्मा राम ऐसे हैं। आत्मा राम का क्या मतलब?
जो आत्मा में रमण करते,
जो आत्मा में रमण करते हैं। हाँ, आत्मा रामाश्च च मुनयो। हाँ,
निर्ग्रंथा मतलब उनको कोई घाट नहीं होती, मतलब बंधे हुए नहीं होते वो। अपि उरुक्रमे वो करते हैं, अपि उरुक्रमे मतलब भगवान का नाम है उरुक्रम,
उरुक्रम भगवान कृष्ण का नाम है। हाँ,
कुर्वन्ति वो करते हैं भक्ति, भक्ति
किस तरह की भक्ति करते हैं?
अहितुकी भक्ति,
अहितुकी भक्ति
इत्थं भूत गुणो हरि की, मतलब ऐसे गुण है भगवान श्री हरि के।
बहुत अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं, इतने आकर्षक और दिव्य हैं कि जो आत्मा राम होते हैं, आत्मा में रमण करने वाले लोग अर्थात निराकार ब्रह्म और जो योगी जन आदि होते हैं, ज्ञान योगी अष्टांग योगी, जो आत्मा को समझ चुके हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ इत्यादि, ऐसे आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचे हुए लोग भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आकर्षित गुणों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण के गुण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का अर्थ नाना प्रकार से किनको समझाया? पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को और फिर सनातन गोस्वामी को। सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया और जब वाराणसी में मिले थे सनातन गोस्वामी, तब उनको भी उन्होंने 61 तरह से हर एक शब्द का अर्थ, अनेक अर्थ बतलाए हर एक शब्द का। और सारे के सारे अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं वो कृष्ण भक्ति की ओर इशारा करते थे। तो जब कृष्ण भक्त भागवत के श्लोकों को देखते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं तो हर एक शब्द का अर्थ कृष्ण की ओर इशारा करके व्याख्या करते हैं। तो ये आत्मा रामः और फिर मत्तः, व्यक्ति मत्तः कैसे होता है इसके बारे में भी नव योगेंद्रों का एक श्लोक है 11वें स्कंद में, कि कैसे भक्त उन्मत्त हो जाता है कृष्ण नाम का कीर्तन करते समय। तो कौन इस श्लोक को जानता है बिना देखे हुए? हाँ,
एवं व्रतस्यो प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग धृत चित्त उच्चैः अशोति यथा रोग तिरौति गायन्ति उन्माद व्रत मूर्त्यन्ति लोकवायः।
बहुत अच्छा। इसका शब्द भेद करके उत्तर मतलब समझाओ।
एवं व्रत सो प्रिय नाम कीर्ते, ये जो व्रत है अपने प्रिय मतलब भगवान के नाम कीर्तन में अनुराग, जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है,
जात अनुराग, जात मतलब जन्म, जात ज जन्म, जात अनुराग, जब अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में स्वनाम कीर्त्या जात अनुराग, जब ये अनुराग उत्पन्न होता है, फिर क्या होता है?
ऊंचे है, देन जोर जोर से,
उच्च ही, हाँ, जोर से
हसंती हंसते हैं, गायंती गाते हैं, रोते हैं, नृत्यंति लोक बाहे, बाहर के लोग कौन क्या समझता है, गोली मार के रोते
नहीं, 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 बाहर के लोगों को गोली नहीं मार ऐसे गोली नहीं मारते हैं हसत्यथो हसति हसति व्यक्ति।